राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे बीकानेर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। चार पुरुषार्थों का वर्णन है। मानो मनुष्य की क्या इच्छा होती है वो चारों के अंतर्गत आ जाती है। सभी जितनी इच्छाएं हैं वो सब चारों के अंतर्गत। एक तो इच्छा होती धन की, धन संपत्ति वैभव मेरे को मिले, ये इच्छा होती। एक होती है धर्म अनुष्ठान, धर्म करने की, पुण्य करने की, दान करने की। एक इच्छा होती है सुख भोगने की, आराम लेने की। एक होती है मुक्ति कल्याण की। चार इच्छाएं होती है। दुनिया की जितनी इच्छाएं हैं वो चार के अंतर्गत आ जाती है। छोटी बड़ी सबकी सब आ जाती है। ये इच्छाएं बता। अब इन इच्छाओं में इच्छा पूर्ति कैसे हो? इच्छा पूर्ति के लिए उपाय बताए हैं तो धन के कमाने के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए। उद्यमते लक्ष्मी मिले, मिले त्रिव्यते मान, तो उद्यम करने से लक्ष्मी मिलती है। और धर्म मिलता है शास्त्रीय आज्ञा के अनुष्ठान करने से, दान पुण्य आदि करने से। और धर्म काम कामना पूर्ति होती है पदार्थों के संयोग से, व्यक्तियों के संयोग से। और मोक्ष होता है तत्व ज्ञान से और परमात्मा की श्रद्धा से। इन चार पुरुषों की चार क्रियाएं बताइए। चार अर्थ की क्रिया चातुरी बताई है, धर्मिक क्रिया श्रद्धा बताइए, काम की क्रिया क्या बताइए? काम की क्रिया, काम की क्रिया इच्छा, और मोक्ष की क्रिया भक्ति। जब चारों भाइयों का विवाह हुआ, भगवान राम, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, तो उस समय में ये बात आई है महिपाल मणि ने क्रियन सहित पदार्थ, क्रियन सहित फलसार। ये धर्म अर्थ का मोक्ष फल होता है, ये क्रियाओं के सहित हो गया। पहले खास थे, अब क्रियाएं आ गई, दोनों से आठ हो गए। ऐसे इनकी प्राप्ति बताई है। तो क्रिया होती है और एक पुरुषार्थ होता है। अब इनमें थोड़ा विचार और करना है। अर्थ की प्राप्ति में और कामना की पूर्ति में प्रागृत की मुख्यता है और धर्म के अनुष्ठान में और मुक्ति के करने में अभी वर्तमान में पुरुषार्थ की आवश्यकता है। हमारे पदार्थ चाहिए चार और हमारे कर्म कितने हैं, क्रियमाण कर्म है, संचित कर्म है और प्रारब्ध कर्म है, तो तीन तरह के कर्म है। चाहिए हमारे को चार चीजें, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चार चीजें चाहिए। और एक क्रियमाण, एक संचित और एक प्रारब्ध। तो क्रियमाण कर्म किया जाए, अब जो नया काम किया जाए वो नया काम खास में धर्म के लिए और मुक्ति के लिए किया जाए। तो करने का विभाग दो के लिए है। और दो के लिए क्या है, अर्थ और काम, इसमें प्रारब्ध की प्रधानता है। इसमें उद्योग काम करता है परंतु प्रधानता प्रारब्ध की है। और इसमें उद्योग में, इसमें धर्म के अनुष्ठान में और मुक्ति की प्राप्ति में अभी वर्तमान के उद्योग की आवश्यकता है। इस उद्योग में फिर साथ में श्रद्धा और विवेक दो काम करते हैं, विश्वास और विवेक। अर्ध और कामना की पूर्ति में प्राप्त की मुख्यता है। तो मुख्यता है तो गौणता किसकी है, गौणता है प्रारब्ध की। और इसमें मुक्ति के करने में, अपने कल्याण करने में, धर्म के अनुष्ठान में मुख्यता अभी नए उद्योग की है। और इसमें सहारा परमात्मा का है। प्रारब्ध होता है वो फल भोग के लिए होता है। पारमार्थिक अनुष्ठान करना, धर्म का अनुष्ठान करना, इसमें भी कुछ प्रारब्ध का हाथ है पर मुख्यता नहीं है। मुख्यता इसमें वर्तमान के उद्योग के उद्योग में भी विवेक की और श्रद्धा की, विश्वास की मुख्यता है। तो अब विचार करोगे ये बात सच्ची है क्या, ठीक सच्ची है बात। मानो धन की प्राप्ति में, भोगों की प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रधानता है और गौणता है पुरुषार्थ की, उद्योग की। उसमें दोनों में प्रधानता उद्योग की, धर्म के अनुष्ठान में और अपने कल्याण करने में, और गौणता संचित की। प्रारब्ध की कहीं होती है विशेष करके संस्कार होगी। अब थोड़ा सा ये विचार करो कि क्रियमान कर्म किसको कहते हैं, संचित किसको कहते हैं और प्रारब्ध किसको कहते हैं। हमें जो नया उद्योग करते हैं, नया काम करते हैं, ये क्रियमान कर्म है। हम करते हैं ये अभी, जिसको क्रियमान कर्म कहते हैं, किया जाए अभी वर्तमान में, तो इसको कर्म क्रियमान है। और कर्म का जो हो जाना, पूरा हो जाना, भीतर संचित होता है, किए हुए कर्म जमा होते हैं, उस जमा हो जा उसका नाम संचित कर्म है, वो संचय होता है। और संचय में से निकाल करके और जो भोगने के लिए प्रवृत्त होता है वो कर्म होता है प्रारब्ध। क्रियमाण है ये वर्तमान में है, क्षण से होता है वर्तमान में है, प्रारब्ध है ये प्रत्यय भूतार्थ है। तो पहले किए हुए कर्मों का जो फल भोग हो उसका आरंभ हो जाए उस विभाग का नाम प्रारब्ध कर्म है। और क्रियमाण प्रारब्ध और संचित तीन कर्म हुए। तो पुरुषार्थ हम करते हैं, उद्योग करते हैं, तो धर्म के अनुष्ठान में और कल्याण करने में गुणता संचित की रहती है। संचित क्या होता है कि जो ये कर्म संग्रह होते हैं उसे संचित कहते हैं, और संचित में से फल भोग के लिए शुरू हो जाते हैं उनको प्रारब्ध कहते हैं। कहते हैं कि धर्म के अनुष्ठान में और परमात्मा की प्राप्ति में संचित होता है, तो संचित कर्म कैसे होता है, कैसे सहायक होता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान दें आप लोग। हरेक काम करते हैं उसे दो चीज पैदा होती है, एक हम कर्म करते हैं ये कर्म होता है, एक तो क्रिया होती है और एक इसका फल होता है। तो क्रियमाण कर्म में काम करते हैं इसमें दोनों तरह के होते हैं, पाप भी होता है पुण्य भी होता है। तो पाप करना का जिसमें एक से दो चीज पैदा होती है, पाप पुण्य से, पाप से भी दो पुण्य होती है, पुण्य क्रिया से भी दो होती है, पाप क्रिया से दो चीज पैदा होती है। एक तो उसका अभ्यास होगा, एक उसका फल होगा। जैसे आप कोई काम करो तो करने का अभ्यास होता है, खेती करता है खेती का अभ्यास होता है, व्यापार करता है व्यापार का अभ्यास हो जाता है, ऐसे चोरी करता है चोरी का अभ्यास हो जाता है, जेब कतरता है जेब कतरने का अभ्यास हो जाता है, पाप और पुण्य करने का एक अभ्यास होता है, एक करने की आदत पड़ती अभ्यास पड़ता है, एक उनका फल होता है। तो दान पुण्य आदि करते हैं, कोई काम क्रियमाण करते हैं क्रियमाण कर्म, उसका दान देना का कर्म करते हैं, उसका फल तो सुख होगा पुण्य होगा जिसमें अनुकूल परिस्थिति बनेगी, और चोरी आदि करेंगे तो ये पाप कर्म होगा, उसका फल आगारी दंड होगा, दुख पाना पड़ेगा। तो ये तो फलांश होता है, एक क्रिया होती है, क्रिया दो चीज होती है, एक अभ्यास बनता है एक फल बनता है। फल भी कोई तात्कालिक होता है परिणाम होता है उसका भी भेद है, पर इतना ही मानो कि ये क्रियमाण कर्म से दो बात होती है। अब क्रियमाण में जो आप करते हैं उससे दो चीज होती है, जैसे आप लोग सत्संग करते हैं, आप हम बैठ करके आपस में भगवान की चर्चा करते हैं, तो चर्चा करने का फल परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति में मार्ग में हमारे को कर्तव्य क्या करना चाहिए, कैसा भाव रखना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। तो ये अभ्यास होता है, इससे एक विद्या आती है, करने का तरीका समझ में आता है, एक ये होता है। और एक सत्संग से शुद्धि होती है, फल होता है इसका। तो सत्संग करने से अंतःकरण निर्मल होता है, भाव निर्मल होते हैं, बुरे बुरे आचरण छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे आचरण होने लगते हैं सत्संग करने से। कुसंग करने से कुसंग का फल एक पाप होता है, एक अंतःकरण की अशुद्धि होकर के पाप करने की प्रवृत्ति होती है। तो एक प्रवृत्ति और एक फल, प्रवृत्ति अभ्यास कह दो, करने का मुहावरा, एक करने का स्वभाव वो बनता है। तो अच्छे काम करने से अच्छे काम करने का स्वभाव बनता है, बुरे काम करने से बुरे काम का स्वभाव बनता है, और अच्छे काम करने से सुखदायी फल मिलता है, बुरे काम करने से दुखदायी फल मिलता है। ये दो दो चीज हो गई। अब इस संचित है उसमें क्या है कि संचित में जो पड़े हैं कर्म उनका फल अभी मिलेगा नहीं, अभी संचय पड़ा हुआ है। फल देने के लिए जितने कृत्य उसमें से प्रवृत्त हो जाते हैं उन कर्मों का नाम प्रारब्ध हो जाता है। तो कर्म फल देने के लिए आरंभ हो गया, इस वास्ते वो प्रारब्ध कर्म है। अब जो वो हमारा अभ्यास बनता है, जैसे चोरी करता चोरी का अभ्यास बन जाएगा, सत्संग करता है सत्संग का अभ्यास बन जाएगा। तो सत्संग करने से एक अंतःकरण शुद्धि होती है, तो एक स्वभाव बनता है। तो स्वभाव अगर ही प्रवृत्त करता है, सत्संग अच्छी होती है, रुचि होती है, तो सत्संग में जाने के लिए स्वभाव बनता है। तत्परता से सत्संग करता है, सुनता है और उसके अनुसार से चलता है, तो सत्संग का स्वभाव बड़ा तेज बनता है। सत्संग में कोई रोक देते तो बुरा लगता है और रुचि होती है जाने की, कहीं मौका न मिले तो याद आती है और मौका लेने पर जाए चला ही जाता है। इस तरह की रुचि पैदा होती है। ये क्रिया का अभ्यास है, अभ्यास अंश है, और वो फल अंश है जो इनसे कल्याण होगा, उद्धार होगा, आचरण सुधरेंगे, सद्भाव और सदाचार होंगे, ये फल होगा। तो इसलिए दो दो चीज होती है। तो संचित का फल अंश वो बंद रहता है और फूलना अंश उसका खुला रहता है। मन में फूलना हो जाती है, काम करते उसमें विद्या अंश है वो काम करता है, तो फूलना होती है क्रिया करते हैं उसमें मदद होती है, ये एक उसमें मुख्य होता है। तो संचित फल अंश नहीं रहता है, ऐसे प्रारब्ध में फल अंश मुख्य रहता है और उसकी फूलना भी रहती, दोनों चीज होती है उसमें। फूलना तो संचित का भी होता है, क्रियमाण का भी होता है, प्रारब्ध का भी होता है। फूलना आज ये मन में संकल्प विकल्प होते हैं तो फूलना में तीनों काम करते हैं, प्रारब्ध भी काम करता है, संचित भी करता है, क्रियमाण कर्म भी। तो क्रियमाण कर्म वो करता है वो संचित हो जाता है। आज आपने सत्संग किया तो सत्संग का संचय हुआ, तो कल सत्संग करने के लिए रुचि होती है, प्रेरणा होती है। तो प्रेरणा अंश ये इनमें भी होता है, संचित है। और क्रियमाण संचित बनेगा, क्रियमाण से हुई तो संचित, पुराने संचित से भी पूर्णा आती है। वो ऐसी आती है कि अभी कोई काम करते नहीं, सामने घटना नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, फिर भी अचानक भीतर की बात याद आ जाए, ऐसे करें वहां जाएं बोले, तो वो संचित की पूर्णा होती है। प्रारब्ध की पूर्णा होती है वो काम करने के लिए, जैसे व्यापार करने की पूर्णा हुई तो व्यापार किया, व्यापार में नफा और नुकसान ये फल होता है, और व्यापार करने की जो विद्या है वो आती है। तो विद्या तो आती ही है, फल अच्छा हो चाहे मंदा हो कैसा ही हो, कोई काम करेगा तो उसका स्वभाव तो बनेगा ही। इस वास्ते शुभ काम करने वाला शुभ काम करने के स्वभाव वाला हो जाता है, उसमें अच्छा काम करने का स्वभाव बन जाता है, आदत बन जाती है। तो ये काम कोई भी क्रिया की जाए वो निष्फल नहीं जाती, फल अभी मिले चाहे न मिले, परंतु अभ्यास तो उनका बनेगा ही। मनुष्य को अपने सुधार करने की कहां पर खास आवश्यकता है, तो एक बात ये विशेष ध्यान देने की है कि मनुष्य को अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना चाहिए। धन संपत्ति संग्रह करते हैं, विद्या अध्ययन करके वो उसका संग्रह करते हैं, ये भी एक संग्रह है। धन खजाने में संग्रह होता है, विद्या पढ़ी हुई बुद्धि में संग्रह होती है। तो ये संग्रह चीज है, एक अपना बनता है स्वभाव। तो स्वभाव है मुख्य होता है, वो अगर लगाने में स्वभाव होता है मुख्य। तो उद्योग जो हम करते हैं पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ में स्वभाव काम करता है। स्वभाव विपरीत होता है, काम करते हैं तो बढ़िया काम नहीं होता, और सहायता नहीं मिलती, कठिनता बढ़ती है। और स्वभाव होता है तो वो काम उसके द्वारा सुगमता से हो जाता है। तो ऐसा स्वभाव एक बनता है। तो सत्संग करने से अपने विशेष करके लाभ होता है स्वभाव का सुधार। शास्त्रों का पठन पाठन भी अपने आचरण के लिए किया जाए, उनसे स्वभाव शुद्ध होता है। और ऐसे पढ़ाई करना है, विद्वत्ता करना है, विद्वान बन जाए, जानकार बन जाए, तो उनसे जानकारी तो अधिक बन जाती है परंतु स्वभाव सुधर जाए ये ठेका नहीं है। शास्त्र पढ़ने से शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा, बहुत बातें जानने लग जाएगा, पर जानने पर स्वभाव सुधर जाए ये बात नहीं है। स्वभाव सुधरेगा, अपना लक्ष्य अपना ध्येय स्वभाव सुधरने का होगा, और वो सुधरे का विशेष ध्येय हो परमात्मा की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, भगवान के दर्शन, भगवत प्रेम की प्राप्ति, ये जब हृदय का ध्येय होगा तो उससे स्वभाव सुधरेगा, नहीं तो विद्वत्ता आ जाएगी। रावण बहुत विद्वान था, बहुत नामी विद्वान था रावण, वेदों पर रावण का भाष्य मिलता है, भगवद गीता पर परमार्थ प्रकपा एक टीका है, उस टीका में वेदों की ऋचाओं का प्रमाण दिया है और उसे लिखा है रावण भाष्य, उसमें रावण का भाष्य लिखा है संस्कृत में, तो रावण भाष्य हो, वेदों पर रावण का भाष्य किया है तो वेदों पर टीका करी, ऐसा विद्वान था रावण। और कई विद्याओं का वो जानकार था, बहुत विशेष समझदार था, नीति भी जानता था, इतना सब जानने पर भी स्वभाव राक्षसी था, असुर स्वभाव था, तो वेदों पर भाष्य लिख दिया, इतना विद्वान होने पर भी उसका स्वभाव सुधरा नहीं, उसका ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करना है, अपना उद्धार करना है, ये ध्येय नहीं था। ध्येय उसका रुपया कमाने का, राज्य संपत्ति प्राप्त करने का, तो दो चीज में संग्रह करना और भोग भोगना, ये दो उद्देश्य था। तो ये दो उद्देश्य जिनके रहते हैं उसकी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। क्यों होगी? उसका मन ही नहीं है, विचार ही नहीं है, तो क्यों प्राप्ति होगी? इन दोनों को गीता में परमात्मा की प्राप्ति के बाधक बताया है। गीता के दूसरे अध्याय 41-44 तक ये प्रकरण आता है, उसमें एक बात बताया कि परमात्मा की प्राप्ति कोई चाहता है तो उसके व्यवसायत्मक बुद्धि एका, एक बुद्धि होती, एक निश्चय होता है, तरह तरह का निश्चय नहीं होता है। भाई हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, अपना कल्याण ही करना है, सुख पावे दुख पावे, अनुकूलता मिले प्रतिकूलता मिले, हमें तो तत्व की प्राप्ति करना है, ऐसा ध्येय बनता है। तो ध्येय ऐसा किसका बनता है? जो संग्रह की भोग की रुचि नहीं होती उनका बनता है। तो व्यवसायत्मक बुद्धि एक होती है, और बहुत शाखा बुद्धि अव्यवसायी, एक निश्चय नहीं है, उनकी बहुत शाखा वाली बहुत बुद्धियां होती है। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, सामने मिला के धनाला मान है तो अपने ही धन हो जाए, अच्छी बात है। मान बढ़ाई होती तो अपने ही मान बढ़ाई हो जाए। बढ़ाई कैसे होती है? कि व्याख्या देने से बढ़ाई होती है, पुस्तक लिखने से बढ़ाई होती है, यही करो अपने इसमें बढ़ाई हो जाएगी। दान पुण्य से भी बढ़ाई होती है, और भी बढ़ाई कई और भी कई उपाय है, अपनी नामगिरी होने से, बहुत बदमाशी करते उससे भी नाम हो जाता है, तो नाम गणाने के ऐसे कई उपाय है, घटम विद्या पटम छिंद्या कुरियाग्राफर राष्ट्रप्रोहण में ये न कह न प्रकार प्रसिद्ध पुरुष हो, किसी तरह से हो जाए, घड़ा फोड़ लगे तो उसे भी स्वभाव प्रसिद्धि हो जाए, घड़ा फोड़ता है। अरे कोई कपड़ा फाड़ दे तो कपड़ा फाड़ने की प्रसिद्धि हो जाती है, कहीं ना गाली देने की तो उसका ये स्वभाव बन जाता है, ये सब तरह सब जानते ही है। तो ऐसे स्वभाव उनका बनता है, वो स्वभाव के अनुसार क्या होगा तो फिर प्रेरणा होती है, वैसे ही काम करने की प्रेरणा होती है। चोरी करने वाला चोरी का स्वभाव तो चोरी करने की प्रेरणा होती है, चोरी करने वो बहुत मुझे पड़ी है ले लें, इसका स्वभाव बन जाता है। इनमें सब में ठीक तरह से क्या करता है कि तो शास्त्र और सत्संग संगति और एक विचार, ये तीन चीज बहुत लाभदायक होती है। अगर कोई कल्याण चाहे तो सत्संग करे, सत्शास्त्रों को पढ़े, भक्तों का चरित्र पढ़े, भगवान के चरित्र पढ़े और सत्संग करे, और विचार करे सद्विचार के मेरा आचरण कैसे सुधरता है, कहाँ कहाँ हमारी गलतियां आती है, कहाँ कहाँ ठीक है, कहाँ पे ठीक है, ऐसे आत्मनिरीक्षण अपना देखता रहे अंतःकरण को कैसा है। ऐसे देखते रहने से सावधानी होती है, कोई अच्छा काम होता है। इन सब में ही मेरे पर असर विशेष सत्संग का पड़ता है। मैं सत्संग को मुख्य मानता हूँ। सत्संग और भजन, इन दो चीजों का मतलब भगवान का भजन करना, भगवान को याद रखना, ये मुख्य बात है। जो पारमार्थिक उन्नति चाहता है उसके लिए नाम जप और परमात्मा के स्वरूप का ध्यान, ये मुख्य बात है। निराकार तो निराकार का करो, सगुण साकार का कर दो, सगुण का करो, निर्गुण का करो, नाम आप कहिए वो नाम लो, उस स्वरूप का चिंतन करो, तो ये बड़े लाभदायक बात है। परमात्मा के नाम जप की ऐसी महिमा है कि सगुण चाहता है तो उसकी सगुणता की प्राप्ति होती, निर्गुण चाहे निर्गुणता की प्राप्ति होती। सगुण अगुण वित नाम सुशाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभागी, भगवान दुभाग्य है, मानो सगुण अगुण दोनों में प्राप्त करने में सहायता करना भगवान नाम। तो नाम जप है, शास्त्रों का स्वाध्याय है, सत्संग है, सद्विचार है, ये कल्याण करने वाले हैं। सत्संगति के द्वारा लाभ बहुत होता है। शास्त्रों में मैंने देखा है कि विशेष महिमा किसी है, एक तो नाम जप की, एक सत्संग की, इन दो की महिमा शास्त्रों में बहुत आती है। हिंदी के शास्त्र है, हिंदी है तो हिंदी की पुस्तक है, संस्कृत की पुस्तक है, संतों की वाणी है, इनमें देखा जाए तो इन दोनों में सत्संग की बड़ी महिमा और नाम जप की महिमा बहुत आई है। नाम की महिमा संतों ने बहुत की है, बिल्कुल ग्रामीण संत हुए हैं जिनकी भाषा अपने अपने देश की भाषा सीधी सादी, उसमें भी नाम जप की महिमा की है और संतों के संग की महिमा की है। इन दोनों में देखा जाए तो नाम की महिमा है, उससे उसकी शुद्धि आती है, निर्मलता आती है, परंतु सत्संग के द्वारा नाम जब निर्मलता आती है, पुण्य भी बनता है, बड़ी पवित्रता आती है, पर सत्संग के द्वारा सुधार बहुत ज्यादा होता है, जल्दी होता है। सत्संग से नाम जपते जपते भी वो सुधार होगा, परंतु समय लगेगा। अगर नाम जप करता रहे, सत्संग करता रहे तो बहुत जल्दी काम होगा। जल्दी उद्धार करने वाले भाई बहनों को चाहिए कि जितने सत्संग में बातें सुने, उन सत्संग की बातों को जो सुगमता से पालन करना दिखे कि ये तो बड़ी सुगमता से आचरण में आ जाएगी, उन बातों को आचरण करना शुरू कर दे, अभी सुनता ही शुरू कर दे। और उसी तरह से आठ पहर अपने सावधान रखे, सावधानी रखकर उनमें कोई शंका रह जाए, कोई संदेह रह जाए क्या करना चाहिए, तो सत्संग करे। सत्संग से संदेह दूर होते हैं, वो अगर पूछा जाए, प्रश्नोत्तर किया जाए तो उससे विशेष लाभ होता है। बिना प्रश्नोत्तर भी सत्संगति में बहुत बातों का ज्ञान हो जाता है, उलझन मिट जाती है। हमने ऐसे लोगों से सुना है और मैंने देखा भी है, बिना पूछे भी हमारे प्रश्नों का उत्तर हो जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि इस विषय में कोई बात मिले, बड़ी उत्कंठा है, और सत्संग में जाकर बैठो तो सत्संग में उसी बात का उत्तर मिल जाता है। तो सत्संग के द्वारा लाभ बहुत ज्यादा होता है, और अपने सुधार के लिए लाभ होता है, जहां जाने चाहे वहां पहुंच जाते हैं। सो साधन भजन ध्यान करना है, ये मोटर का चलना है, और भीतर के सद्भाव सदाचार होते हैं, ये भीतर का है। तो भीतर में खर्चा भी होता है और संग्रह भी होता है, डायमाना से डायनामा से खर्चा पैदा होता है। अगर प्रश्न पूछता है तो उसका पता लगता है कि इसके ये कमी है, यहाँ इसकी शंका है, यह संदेह है, तो वैसे ही कहने वाला होता है, उत्तर देने वाला, तो वो बात करने से उसके समाधान बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक हो जाता है। इस वास से उद्धार जल्दी चाहता है, उसको सत्संग करनी चाहिए, और अपने संदेह हो तो वो पूछना चाहिए, निरर्थक बातें नहीं, खास अपने साधन में संदेह वो बात पूछना। प्रश्न वही लाभदायक होता है जो हमारे साधन में अड़चन आती है, उसमें हम किंग करते विमूढ़ हो जाते हैं, कैसा मौका मिले क्या करें, ऐसी वृत्तियां हो तो क्या करें, ऐसी बातें जो बाधक मालूम रहती यदि उनको पूछे तो उनसे बहुत विशेष लाभ होता है। और ऐसे ही सुनने से बहुत बहुत जानकारी भी हो जाती है। इसमें मैंने एक बात देखी है कि जो शास्त्रों को केवल पढ़ते हैं उन पढ़ने से भी ज्ञान होता है, परंतु जो सत्संग है वे कहने वाला अगर शास्त्रों का ज्ञानी है और ठीक समझदार है तो व्याख्यान से जितना बोध स्पष्ट होता है उतनी पुस्तकों से नहीं होता है। पुस्तकों के पढ़ने पर भी शंकाएं रह जाती है और एक सीखने की प्रवृत्ति हो तो सीख लेता है, परंतु हृदय की गांठें खुलती नहीं, कई शंकाएं वो समाहित होती नहीं, वे बीच में रह जाती है। और सत्संग करने वालों के जो सत्संग अच्छा मिले तो बहुत बातों का ज्ञान हो जाता है, सांसारिक व्यवहार का ज्ञान भी हो जाता है, परमार्थ का ज्ञान हो जाता है, लोक का परलोक का बहुत ज्ञान होता है सत्संग के द्वारा। तो सत्संगति है सबका मूल है, सबका है मूल, सत्संग करने से सब होता है। सोई फल सोई मूल दो ही बताया, दोनों बताया है, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सोई साधन फूला। सब साधन तो फूल है, मूल सत्संगति है फल सत्संगति है, तो मूल और फल होता है उसके बीच में पत्ते और फूल आते हैं, तो मूल और फल होता है उसके बीच में पत्ते और फूल आते हैं। तो सत्संगति मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि, सब साधन फूला, सत्संग करे तो साधन आ जाएंगे बीच में ही। तो सत्संगति महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है शास्त्रों में। सुबह स्वाभाविक अपने को लाभ हो जाता है। मैं तो एक दृष्टांत दिया करता हूं कि जैसे साधन भजन ध्यान करे, एकांत में रहे, शास्त्रों को पढ़े, खूब भजन साधन करे, तो वो कमा करके धनी होता है, पता ही नहीं लखपति हो जाता। तो इसमें सत्संग के द्वारा अगर वो सदाचार सद्गुण लाना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, साधन करना चाहता है, तो सामग्री स्वतः मिलती है, बड़ी बढ़िया सामग्री मिलती है। शास्त्रों के पढ़ने से उतना बोध नहीं होता, किस समय में किसको क्या करना चाहिए, किस हाथों में लाना चाहिए, ये विधि शास्त्रों के पढ़ने से नहीं होती है। इसको मारवाड़ी में भिन्नार गुणना कहते हैं, भिन्नता है मन पढ़ता है, भिण जाओ भाई, मन पढ़ लो, पढ़ाई करो, और भिणी जानो फिर गुणी हो गया, तो भिणिया तो गुणिया नहीं है भाई, तो गुणिया का मतलब भी आत्म में लाने की बात। तो ये सत्संग के द्वारा वो भिणाई भी होती है और गुणाई भी होती है, गुण भी बहुत विशेषता से आते हैं, सत्संग से इसे विशेष लाभ होता है। अब वो कर्मों के विषय की बात फिर करें थोड़ी, तो इससे लाभ उठा करके अपने साधन में परायण हो जाए। सत्संगति और साधन परायण में क्या बात है, बात याद आ गई। जैसे रात्रि में मोटर चलती है, तो मोटर चलती है तो उसकी अगाड़ी प्रकाश दिखता है, जो जो प्रकाश ठीक दिखता है तो मोटर चलती है, जो चलती प्रकाश बढ़ता है। मोटर की रफ्तार अगर बढ़ेगी, उसकी चाल तेजी से होगी, प्रकाश भी तेजी से होगा, क्योंकि डायनामा में घूमेगा तो उसमें तेजी आएगी। तो ये दो चीज, एक प्रकाश है एक गति है मोटर की। तो प्रकाश तो ज्ञान होता है कि भी कैसे करे कौन सा काम, ये तो प्रकाश मिलता है, और जब ध्यान कीर्तन सत्संग ये चाल है, तो चाल चलता रहे तो प्रकाश बड़ा काम देता है, और चाल चले नहीं, कोरा शास्त्र पढ़े सत्संग की बातें करे और उद्धार के विचार न हो चले नहीं, तो प्रकाश तो बढ़ जाता है परंतु स्थिति जल्दी नहीं बढ़ती। अपनी स्थिति पहले कैसे थी अब कैसी है, ये स्थिति नहीं बढ़ती, और बिना सत्संग करता है तो उसको प्रकाश नहीं मिलता है। चलने में गति तो मिलती है परंतु कैसे चले ये नहीं मिलता है। तो उद्योग करना ये मोटर का चलना है, और अगर ये प्रकाश है उस प्रकाश में मोटर चलती है। मोटर की चार अवस्था होती है, जैसे मोटर चलाते हम चढ़ते हैं तो उसकी चार अवस्था होती है। दूसरे भजन ध्यान करने से भीतर जमा होता है, और साधन करने से तत्परता से चलने से रास्ता भी होता है और जमा होते हैं, जमा है वो रास्ते में काम देती है। तो एक अवस्था खड़ी रहती है वो है, एक तेल जलता है खड़ी है, और एक भीतर से बंद कर चलती है तो सबसे बढ़िया अवस्था ये है कि खर्चा तो होने चले तो राग द्वेष मिटा करके और संसार का काम करते हैं तो भीतर तक खर्चा तो आता नहीं यार, काम धंधा हो जाता है। इसको कर्म योग कहते हैं। शक्ति आ सकती है, कामना का त्याग कर दूसरों के हित के लिए काम करे तो रास्ता तो करता है परमात्मा, तो चलते हैं और खर्चा होता नहीं। खर्चा होता नहीं इतना ही नहीं है, उसमें वे डायमंड नामा चलता है तो जमा भी हो जाता है। तो वो शक्ति चलने की है, वो शक्ति बड़ी कामी दामी चीज है, अच्छी चीज है। मन परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बड़ी लाभदायक चीज है। तो उद्योग किया जाए, उस उद्योग में शास्त्रों के अनुसार हम लोग आदेश का सामने आदर्श क्या रखें, आदर्श रखें शास्त्र। तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्था, कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रों का लेख है, उसके अनुशासन करें। शास्त्र कह जैसे करें और संत महात्मा कह जैसे करें। जो शास्त्रों को जानने वाले हैं और तत्व का जिन्होंने अनुभव किया है, केवल पुस्तकों में ही नहीं उन पढ़ करके अपने आचरण किया है, तो उनके उपदेश से हमें रास्ता बहुत बढ़िया मिलता है। वो केवल पुस्तकों से नहीं मिलता है, तो शास्त्रों के अनुसार चले और ऐसे पुरुष मिल जाए तो उसके आचरण के अनुसार उनकी आज्ञा दो होती है। संत महात्मा से दो आदर्श मिलते हैं, एक तो वे कहते हैं जिसने अपना रास्ता मिलता है, एक वो करते हैं उससे आदर्श मिलता है। वे करे जैसे हम लोग भी करें तो हमारा रास्ता ठीक मिलेगा। एक पूछ इस बार से यद्यदा करते श्रेष्ठ देवे तरोना सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तन वर्तते। ये श्लोक आया तीसरे अध्याय में। तो वो क्या है यदि जो जो 21वां श्लोक तीसरे अध्याय का, यदि यदि आचरती श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है उसके अनुसार लोक आचरण करते हैं, और सयत प्रमाणं कुरुते वो जिसको कह देता है वो करते थे। दो बातें क्यों बताई कि जो आचरण करता है उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। जो अपने स्वयं भजन ध्यान जप आदि करता है, अनुष्ठान करता है, अपने अनुभव किया है और वो बात कहता है, उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। इस वजह से यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव, पांच शब्द दिए, यत यत तत् तत् एव। और वो प्रमाणित करता है तो उसमें दो शब्द आते हैं, सहयत प्रमाण अंकुरते लोकस्तन वर्तते, उसके अनुसार वर्ताव करता है। तो आचरणों का अर्थ पांच गुना पड़ता है, वहां बातों का असर दो गुना पड़ता है। अरे आचरण है वो बात कहते तो उसके आचरण का भी असर पड़ता है, वचनों का भी विशेष असर पड़ता है, क्योंकि उनके भीतर में अनुभव है। तो अनुभव की चोट बहुत विशेष तरह से होती है। जैसे बंदूक छूटती है तो बंदूक में केवल बारूद भरा रहता है तो शब्द तो बड़ा जोर से होता है परंतु गोली न होने से मार नहीं करती। और भीतर से गोली भरी रहती है शीशा, तो वो बंदूक छूटती है अगर छेद कर देती है, मार करती है वो। तो अनुभव होता है, उनके वचनों में वो ताकत होती है जो उनका आचरण सुधर जाए, उनके भाव सुधर जाए, उनके क्रिया सुधर जाए, उनका विशेष सुधार हो जाए। ये अनुभव की शक्ति आती काम करती है। और बिना अनुभव के किया जाए तो शब्द तो होता है, कानों में चूं चूं होने लगती है, ऐसे कंपनी हो जाती है, इस वजह से उसे काम होता है परंतु वो उतने चोट नहीं पहुंचती। तो अनुभव पुरुष की वादे थी कहने हुई, एक हृदय में चोट पहुंचती है उसके अनुसार जीवन बड़ा सुगमता से सुधर जाता है। वचन आगले संत का हरिया हस्ती दंत, ताख न टूटे धर्म का सेंदे ही बन संत। वाणी में आता है संतों की वाणी में, महात्माओं की वाणी में, उसे एक दृष्टांत दिया जाता है कि एक राजा थे, उस राजा ने दूसरे राजा पर विजय कर ली। एक दो राज्य को जीत करके वो कई दिनों से पीछे आने लगे, तो आते आते रात हो गई ज्यादा रात हो जाने से कमाट बंद हो गए, गढ़ का कपाट बंद हो गया, शहर का कपाट बंद हो गया। तो राजा आए तो कहे वो कपाट खोलो चाहते हैं, इस बार कपाट खुलता नहीं। और खुलता क्या नहीं खोलो, कैसा ये सब दरवाजों की जो चाबी है वो कोट वाली में चली गई है, वो 4 बजे ही आवेगी, फिर दरवाजा खुलेगा भी नहीं खुलेगा, खोल कर जाने खोलो, राजा है ना, हुक्म है उसका, खोलो। कहते खोलते नहीं, तो पूछा कि अपने दूसरे राजाओं पर चढ़ाई की, उन्होंने तो अपने कपाट बंद कर दिए, कहा फिर क्या किया, क्योंकि तो खोलते थोड़ी है वो शत्रु के लिए। तो कहते हैं हाथी है, उनको मदिरा पिला करके और उनको उसके चलाया तो उनके दरवाजे जो होते हैं शहरों के, उन दरवाजों के ऊपर भाला लगा रहता है, ऐसा बड़े बड़े किले लगे रहते हैं, देखा ही होगा दरवाजों के ऊपर। उसका अर्थ क्या है, वो किले लगा रहने से हाथी उनको मार नहीं सकता, अब सीधा कपाट हो तो हाथी मारे अपने दांत के जिसे तोड़ दे, वो तो किला लगा रहता है, किलों तोड़ दिया जाए अथवा ढाल दे करके उनको सबको रोक दिया जाए, फिर हाथियों को दिया जाए, हाथी दांत से मारते हैं तो उसे कमार टूट जाता है, तो हाथी के दांत से कमार टूटते हैं, तो हाथी का हाथी तो मर गए बहुत से, आपस में है नहीं, युद्ध में मारे गए, तो दांत के दांत तो है कि दांत से तोड़ दो, कि दांत से नहीं टूटेगा वो दरवाजा, दांत से तब टूटे, जब हाथी के लगे हुए होते हैं तो तोड़ते हैं, लगे हुए है नहीं कोई दांत, ऐसे संतों की वाणी भी कही जाए सुनाई जाए तो उनसे भीतर से विताखन टूटे, तरम भरम के सेंदे ही बने संत, सेंदे ही संतों से जो भरम मिटता है वो केवल वाणी से उतना नहीं मिटता, वो लगे हुए दांत होते हैं हाथी के वे तोड़ देते हैं, तो ऐसे अनुभवी पुरुष होते हैं, उनके अनुभव लगा हुआ था तो उससे भीतर के अज्ञानिक पाठ टूट जाते हैं, यार वही वाणी कही जाए वही वचन कहा जाए वो कहने पर भी उतना असर नहीं होता, क्यों नहीं होता कि पूरे हाथ ये दांत है, अब दांत है मुश्किल की तरह मारे तो कबाड़ थोड़े टूटेगा, इस वजह से अनुभवी पुरुषों के द्वारा जो सत्संग होती है बातें होती है उन बातों का असर पड़ता है, विशेषता से लोगों के सुधार होता है, स्वतः रुचि हो जाती है, तो भाव बदल जाता है, पहले भाव संसार का ऐसा, बड़े बड़े चोर और डाकू सत्संग से संत बन गए, महात्मा बन गए, अच्छे पुरुष बन गए, सत्संग मिलने से सठ सूत्र ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, सठ सूत्र ही सफा मूर्ख होता है, सठ अनजान अनजान वो सुधर जाता है, तो सठ भी दो तरह के होते हैं, गीत रामायण में एक सठ आया है एक मूर्ख आया है, तो मूर्ख का सुधार नहीं होता, मूर्ख नहीं, यदि विशुद्धा वर्षे जद मूर्ख हृदय चेत, यदि विशुद्धा वर्षे जद, उनको जो गुरु मिले ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए तो सुधरता नहीं, वो मूर्ख नहीं सुधरता, सठ सुधर जाता है, तो मूर्ख और सठ में क्या फर्क है, तो जो बातें जानता है और सीखता है और काम में नहीं लाता है और आचरण ऐसा बड़े खराब करता है वो मूर्ख होता है, सोते हुए तो जगा दे पर जागता हुआ सोते उनको कैसे जगाया जाए, उसे जागने की इच्छा ही नहीं है, मन में ही नहीं है, तो वो नहीं होगा। फूले फले न बेत जद विशुधा वर्ष जलद मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंती सम, और नहीं तो सठ सुधरे, सठ के अनजान है जानता नहीं है, तो जानता नहीं है तो उसको जल्दी कहता है जल्दी सुध जाता है, सुख से समझे तो मूड जन अर्ध सुख विदुष जाए अर्ध दग्ध मति मंद को भी नहीं सके समझाए, सुख से समझे तो मूड जन साफ मूर्ख है उसको कह दिया जाओ तुम हे सालग्राम जी है इनकी सेवा करो ये भगवान है, सर भगवान मान भजन में लग जाता है, भगवान प्रकट हो जाए उनके सामने, तो सठ सुध रही सत्संगति पाई, पार्श पर्श कुधा पार्श पर्श स्पर्श कर पाई, लोग का सोना बन जाए, तो इस तरह से सठ सुधर है, तो अनजान बना वो सुध जाता है, मूर्ख का सुधार नहीं होता, तो सत्संग से बहुत ज्यादा सुधार होता है, पर सुधार होता है भीतर में अभिमान न होने से, अभिमान विद्या का अभिमान होता है, वर्ण का मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं वैश्य हूं ऐसे वर्ण का अभिमान होता है, अपने अवस्था का भी अभिमान होता है, अपने में विद्या आदि का अभिमान होता है, गुणों का अभिमान होता है, धन का अभिमान होता है, तो अभिमान ही के सत्संग जल्दी लगते नहीं, अभिमान बड़ी भारी बाधा है, संस्कृति मूल शूल प्रधनाना सकल शोकदायक अभिमाना, तो अभिमान छोड़ करके अपने सुधार के लिए किया जाए तो उसको सत्संग का लाभ बहुत होता है। जानकारी का अभिमान है, बल का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, और अपने कुल का अभिमान है, आश्रम का अभिमान है, मैं साधु हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ आदि का अभिमान है, तो उसको सत्संग जल्दी लगते नहीं। मैं बड़े गुरुओं का चेला हूँ, बड़े आश्रम का हूँ आदि आदि का अभिमान होता है, तो उसको सत्संग नहीं लगती। सत्संग सुगमता से अपना कल्याण चाहता है, देखता ही नहीं इन बातों को, बाहर की व्यवहार की बातों नहीं, उसको तो परमात्मा की प्राप्ति है। तो व्यवसाय आत्मा बुद्धि एका एक निश्चय, हमें तो अपना कल्याण करना है, तेरे पावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन गुहार, अपना कल्याण करना है, ऐसा जिसका पक्का विचार होता है उसको सब जगह लाभ होता है, जहां ज्यादा लाभ होता है। क्या बताऊं उसकी विचित्रता इस बात होती है, जहां जाओ वहां लाभ होता है, मानो सज्जनों से भी लाभ होता है, दुर्जनों से भी लाभ होता है, तटस्थ रहने वालों से लाभ होता है, अच्छे आदमियों से भी लाभ होता है, बुरे आदमियों से लाभ होता है, और साधारण आदमियों से भी लाभ होता है। जैसे कोई दुकान है, व्यापार चलता है, तो उसमें जो लगन जिसके व्यापार की होती है वो अपनी दुकान चलाता है, सबकी सब दुकान खुली है तो भी उसकी दुकान खुली है, और कई खुली है कई बंद है तो उसकी दुकान खुली है, और सब बंद हो जाए तो अकेले खुली रखता है, कोई आता है तो चुपचाप बुला लेता है, बोलो हल्ला मत करो दूसरी कोई दुकान खुल जाएगी, तो उसकी तत्परता होती है, दुकान चलती है तो चलती है, कई चलती है कई नहीं चलती तो भी चलती है, या दुकान सब बंद है तो चलती है उसकी। तो इस तरह से साधन की तत्परता उत्साह केवल अपना कल्याण करना है, अपनी स्थिति में सुधार नहीं होती क्या हुआ, वो तीजी चौथी भूमिका होने पर भी पांचवी छठी के लिए भी उसका उद्योग बंद नहीं होता है, उसका आगामी उद्योग चलता ही रहता है उस विषय में, नहीं तो थोड़े से भी संतोष हो जाता है, तो संतोष ये बड़ा भारी बाधक है। परमात्मा की प्राप्ति में साधन में संतोष कर लेना, अपनी स्थिति मान कर संतोष कर लेना बहुत घातक है। संसार में संतोष करना, संतोष त्रिशु कर दे, तीन में करना, स्वदारे भोजने धने, अपने परिवार मिला है स्त्री पुत्र आदि उनमें संतोष करना, और धन जितना उद्योग करने पर मिल गया प्रारब्ध के अनुसार उसमें संतोष करना, भोजन भक्त पर जैसा मिल गया उसमें संतोष करना, तीन में तो संतोष करना, त्रिशु नहीं वध कर्तव्य, तीन में संतोष नहीं करना। स्वाध्याय चपदान हो, तात्विक बातें समझने के लिए स्वच्छ अध्ययन स्वाध्याय अपना अध्ययन ठीक तरह से करने से इसमें संतोष नहीं करना, जप में संतोष नहीं करना, दान पुण्य उपकार सेवा करने में संतोष नहीं करना। लोग करते क्या है, पाठ पूजन का एक नियम है उतना कर लिया पुस्तक समेट कर रख दे रहे हैं, दुकान में 50 रुपया पैदा हो गया, 5 रुपया पैदा होते 50 रुपये पैदा हो गया तो दिन भर खुल रखता है, 1 रुपया पैदा न हो वो तो लगे ही रहते हैं। तो उद्योग करने वाले होते हैं वो अपने स्तर में तत्परता से लगे रहते हैं, तो वो उद्योगी आदमी काम कर देता है, पारमार्थिक साधन में तो उद्योग की प्रधानता है, इस वास्ते अपने साधन में तत्परता से लगे रहना चाहिए। बात चल रही थी धर्म काम मोक्ष की, अपने विशेष करके यहाँ बात होती है मोक्ष की, यहाँ धन कमाने की बात इतनी नहीं आती, धर्म अनुष्ठान की बात स्वभाव कुछ आ जाती है, क्योंकि वो भी निष्काम करने से मुक्ति देने वाला होता है, इस वास्ते कर्तव्य की पालन की बात आती है, घर में ऐसा रहना चाहिए, स्त्री को ऐसा रहना, पुरुषों को ऐसा रहना चाहिए, आपस में ऐसा बर्ताव करना चाहिए, तो निष्काम भाव से वो बर्ताव भी कल्याण करने वाला है, जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय ये भी कल्याण करने वाला है। तो यहाँ विशेष कल्याण की बात होती है, दूसरी भी बातें आ जाती है तो अपने कह देते हैं, कोई पूछ देते हैं बता भी देते हैं, जैसी आवे जैसी अपने जैसे बोध है वैसा बता देते हैं, परंतु पर जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, जीव अपनी जगह जैसे वहां जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, जैसी परिस्थिति में है, उसी में वहां रहता हुआ ही वो परमात्मा प्राप्त कैसे कर ले, ऐसे विचार रहता है। तो गीता एक ऐसी चीज है, गीता में विलक्षणता है, युद्ध में परमात्मा की प्राप्ति बताती, व्यवहार में परमात्मा की कला बताती, व्यवहार करते हुए और व्यवहार में भी युद्ध रूपी क्रिया, दिन भर मनुष्यों का दुखड़ा काटना, ऐसे काम करते हुए भी कल्याण कर दे, ऐसी युक्ति गीता में बताई गई है। व्यवहार में रहते हुए, संसार काम करते हुए, गृहस्थ में काम करते हुए, जैसी परिस्थिति उसी परिस्थिति में रहते हुए परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। ये गीता में भी सदर बात बताई। इस बात गीता सबके लिए बड़ी मान्य होती है। तो मुक्ति चाहने वालों को अपने धर्म का अनुष्ठान निष्काम भाव से करना चाहिए और अर्थ की प्राप्ति के लिए चिंता नहीं, उसमें संतोष होना चाहिए। संतोष सबको रखना है, पर पारमार्थिक बात में तो ज्यादा रखना चाहिए। और व्यवहार में चलने वालों को भी व्यवहार करने में कमाने की चेष्टा में संतोष नहीं करना, परंतु मिले उसमें संतोष करना। मानो काम तो करते रहना, मिल जाए संतोष करना। संतोष तुल्यम मित्र वो बड़ा भाई खजाना है। इस वास्ते परमार्थिक काम में लगे रहना चाहिए। मानो पूर्व प्राप्त के कारण से जो चीज मिलती है उसमें तो संतोष करना, और नया पुरुषार्थ है उसमें संतोष नहीं करना, वो करते ही रहना चाहिए। इसकी खास चीज ये चीज है। तो पारमार्थिक उन्नति में सदा ही लगे रहे, इसमें लगे रहे उसे सफल होती है। सांसारिक धन कमाने आदि में तो दोनों बात होती है, नफा भी होता है नुकसान भी हो जाता है। पर पारमार्थिक मार्ग में चलने वाला भजन ध्यान सत्संग करता है तो लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं। इसमें केवल लाभ ही लाभ है, नुकसान है ही नहीं। व्यापार में नफा नुकसान दोनों, खेती में नफा नुकसान दोनों, दलाली में नफा नुकसान दोनों, एक कई काम करते हैं जो पैसों के लिए, उनमें दोनों चीजें आती है। मैं पारमार्थिक बात में एक ही बात है, लाभ होता ही है नफा होता ही है। एक और बात है, पारमार्थिक साधन करने वाले का व्यवहार सुधर जाता है, और केवल व्यवहार में लगा होने वाले का व्यवहार भी शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है। और पारमार्थिक बात में वो तो सिद्धि होती है, पर व्यवहार भी उनका सुधर जाता है। सत्संग के द्वारा उनके द्वारा व्यवहार सुधार की बात भी आ जाती है, तो वे बातें भी सुधर जाती है। और पारमार्थिक तो है ही खास, वो तो सत्संग का फल है ही। की जाए उद्देश्य यही है, लक्ष्य यही है, तो उसमें सिद्ध होता है जो कहना ही क्या है। तो सत्संग के द्वारा पहले भी मैंने कहा, शास्त्रों से सद्विचारों से अपने लाभ होता है और सत्संगति से लाभ होता है। इन तीनों में भी सत्संगति से लाभ बहुत दो ज्यादा होता है। उसमें देखा था दोनों तरह के, सांसारिक और पारमार्थिक, लोक का और परलोक का, दोनों का सुधार होता है। तो नाम जप और सत्संगति से सब लाभ होता है। हरि नाम भजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है श्री गुरु, परमार्थ स्वार्थ सब सिद्ध होता है। इस वास्ते सत्संग करने से विशेष लाभ होता है, ऐसी बात है भाई। तो अर्थ धर्म का मोक्ष तैयार है तो धन कमाना है, धन में प्राप्ति की मुख्यता, इस बात धन की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसमें संतोष रखना। और कामना की पूर्ति के लिए तो काम करना ही नहीं, कामना का त्याग करना। चार पुरुषार्थ में भोगों का, भोगों की इच्छा का, भोगने का त्याग बताया है। और धन धन है उसमें संतोष रखते हुए अपना समय लगा कमाने की बात बताई गई है। और धर्म पूर्व काम करें, सभी उद्योग क्रिया धर्म पूर्व, धर्म को सामने रखकर सब काम करें। हमारा हिंदू समाज है, उसका एक उद्देश्य है कि सब काम धर्म को सामने रखकर करेंगे। जन्मना मरना आदि जितनी जितनी क्रिया होती है, क्या धर्म है उस धर्म को पहले पूर्व सामने करें। वो सकाम भाव करने से धन अधिक प्राप्त होता है उस जन्मांतरा में, और निष्काम भाव के अंतर्गत शुद्ध होकर परमात्मा की प्राप्ति होती है, कल्याण होता है। इस वजह से करें। और सत्संग सब लगे, सबके लिए बड़ी लाभदायक है।